इतिहास की दूसरी पुस्तक अध्याय 23। मगर सातवें साल में पुरोहित यहोयादा ने साहस किया और सेना के इन शतपतियों से वाचा बांधी कि येरोहाम के पुत्र अजरिया, योहानन के पुत्र इश्माइल, ओबेद के पुत्र अजरिया, अदाया के पुत्र मासेया और जिक्री के पुत्र एलीशाफत से इन्होंने सारी यहूदिया में घूमकर यहूदिया के सारे नगरों से लेवियों को और इज़राइल के पितरों के गोत्रों के प्रधानों को इकट्ठा किया और वे सभी यरूशलेम आ गए। तब परमेश्वर के भवन में इन सभी ने राजा के साथ वाचा बांधी। पुरोहित यहोयादा ने इन सबको संबोधित करते हुए कहा, यह देख लीजिए कि शासन राजकुमार ही करेगा, क्योंकि यह दाविद के वंशजों के बारे में की गई यहावे की भविष्यवाणी के अनुसार है। आप लोगों को करना यह होगा, वे पुरोहित और लेवी जो शब्बात पर यहाँ आया करते हैं, उनमें से एक तिहाई द्वारपाल का काम करेंगे, बाकी एक तिहाई राजा के घर पर होंगे और बाकी एक तिहाई नींव के द्वार पर रहेंगे, बाकी सभी यहावे के भवन के आंगन में रहेंगे। यह ध्यान रखा जाए कि पुरोहितों और सेवा के लिए चुने गए लेवियों के अलावा कोई भी यहावे के भवन में प्रवेश ना करें। पुरोहित और लेवी भवन में इसलिए प्रवेश करेंगे कि वे पवित्र हैं। हर एक व्यक्ति यहावे की विधि का पालन करेगा। लेवी राजा को घेर लेंगे, हर एक के हाथ में उसके शस्त्र होंगे। यदि कोई भी भवन में आने की कोशिश करे, उसका वध कर दिया जाए। राजा के आने जाने में आप हमेशा राजा के साथ साथ रहेंगे। उन्हें जैसा आदेश पुरोहित यहोयादा द्वारा दिया गया था, उन्होंने उसकी एक एक बात पूरी की। पुरोहित यहोयादा ने छुट्टी पर जा रहे किसी भी दल को शब्बात सेवा से अवकाश लेने ना दिया। इससे जो अवकाश पर जा रहे थे वे और जो सेवा के लिए आ रहे थे वे सभी वहां इकट्ठा हो गए। तब यहोयादा ने परमेश्वर के भवन में जमा राजा दाविद की छोटी और बड़ी ढाले और बर्छियां शतपतियों को दे दी। अपने अपने हाथों में हथियार लिए इन सभी व्यक्तियों को यहोयादा ने राजा के आसपास भवन में वेदी के पास और भवन के दाईं ओर से बाईं ओर तक ठहरा दिया। तब पुरोहित यहोयादा और उसके पुत्रों ने राजकुमार को लेकर बाहर आए, उसके सिर पर मुकुट रखा और उसे साक्षी पत्र दे दिया। उन्होंने उसे राजा घोषित कर उसका राज अभिषेक किया और सबने जय घोष करते हुए कहा, महाराज जीवित रहे। जब अथालिया ने उस भीड़ का हल्ला और राजा की प्रशंसा में की जा रही जय जयकार सुनी, वह यहावे के भवन में लोगों के बीच में आ गई। उसने दृष्टि की और देखा कि राजा अपने ठहराए हुए खंभे के पास खड़ा हुआ था और शतपति और तुरी वादक राजा के पास खड़े हुए थे। सभी देशवासी आनंदमग्न हो तुरी फूंक रहे थे। गायक लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ स्तुति कर रहे थे। यह देख अथालिया अपने वस्त्र फाड़ चिल्ला उठी, राजद्रोह, राजद्रोह। पुरोहित यहोयादा ने शतपतियों को जो सेना के अधिकारी थे आदेश दिया, उसे बाहर पंक्तियों के बीच में लाया जाए और जो कोई उसके प्रति सच्चा व्यक्ति हो उसको तलवार से मार डाला जाए। पुरोहित यह आदेश दे चुका था यहावे के भवन में उसका वध ना किया जाए, तब उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब वह राजघराने के घोड़ा फाटक के पास पहुंची, उन्होंने उसका वध कर दिया। यहोयादा ने खुद अपने सारी प्रजा और राजा के साथ यह वाचा बांधी कि वे अब यहावे के होकर रहेंगे। सारी जनता बाल के भवन को गई और उसे नाश कर डाला। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों को चूर चूर कर डाला। तब उन्होंने वेदियों के बीच ही बाल के पुरोहित मत्थान का वध कर डाला। इसके अलावा यहोयादा ने यहावे के भवन की देखरेख की जवाबदारी लेवी पुरोहितों को सौंप दी। इन्हें यहावे के भवन में दाविद द्वारा चुना गया था कि वे मोशे की व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार होमबलि चढ़ाया करें। यह सब दाविद द्वारा चलाई गई विधि के अनुसार खुशी से गाते हुए किया जाना था। उसने यहावे के भवन के लिए द्वारपाल चुन दिए कि किसी भी रूप में सांस्कारिक रूप से अशुद्ध कोई भी व्यक्ति भवन में आ ना सके। तब यहोयादा ने शतपतियों समाज के सम्माननीय व्यक्तियों, प्रजा के प्रशासकों और सारी प्रजा को इकट्ठा किया और यहावे के भवन में से इन सभी के सामने राजा को बाहर लाया गया। उसे ऊपरी द्वार से लेकर वे राजघराने में आए। वहां उन्होंने राजा को राज सिंहासन पर बैठाया। इस पर सारी प्रजा में खुशी छा गई और नगर में शांति भर गई। तलवार से अथालिया की हत्या हुई थी, यह इसका मुख्य कारण था।